तालिबात कहें, तालिबात कहें, हमारी दो बेटियां बहनें माशाल्लाह से उनकी ग्रेजुएशन और बहुत ही अच्छे अंदाज से और आला नंबरों के साथ और आला जो है पोजीशन के साथ माशाल्लाह, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो इंशाल्लाह। और परवरदिगार आलम से ये दस बदुआ है कि हमेशा तालीम, इलम, तरबियत और जितनी भी अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए मन है से इंसान एक सलाहियतें दी हैं खुदा दादी, और इलम को खास कर की इंतहाई इम्पोर्टेंस हासिल है, उसमें मजीद मदारिज तय करें और इस इलम को मखलूक खुदा की बेहतरी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए कि वो जमीन खुदा में बंदगान खुदा बन सकें, उसके लिए इस्तेमाल करें और खुद इनके लिए भी इंशाल्लाह ताला ये मुफीद वाक़ हो। जो मौजू दिया गया है उस मौजू को तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और उस मौजू को शुरू करते हैं मौलाए कायनात के नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 34 के तकरीबन जो लास्ट पोर्शन है या लास्ट जो लाइनें हैं उसमें से एक लाइन को लेते हुए, जिसमें मौलाए कायनात इमाम और फॉलोअर्स के जो म्यूटल कहें कि जो वो हैं फराइज हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसको बयान किया है कि जिसमें फरमाते हैं वह अम्मा हक्की अलैकुम, जहां तक रही बात की इमाम का फॉलोअर्स के ऊपर क्या हक है, तो फरमाते हैं फल वफा बिल बैअति वन नसीहतु फिल मशहदी वल मगीबी वल इजाबतु हीन अदउकुम वत्ताअतु हीन आमुरुकुम। फरमाते हैं कि देखें मेरा जहां तक एज ए इमाम जो हक है आप लोगों के ऊपर, या एज ए लीडर और एज ए रहनुमा और रहबर, वो हक ये है कि बेअत का हक अदा करो, क्योंकि आप बेअत कर रहे होते हो, और चाहे तुम इमाम के सामने रहो या कहें और रहो, इमाम वाले शहर में रहो या किसी और शहर में रहो, इमाम के टाइम पर रहो या उस टाइम पर ना रहो, लेकिन जाहिर है कि जो इमाम का हक है वो बरकरार रहता है। दीन तो हर वक्त के लिए आया है, इमाम हाजिर हो या गायब रहे, उस इन तमाम सिचुएशंस में खैरख्वाह रहो, और जब पुकारूं तो लब्बैक कहो, और जब मैं ऑर्डर करूं हुक्म दूं तो उसको इताअत करो। तो ये कुछ हुकूक, तकरीबन चार मोटे मोटे हुकूक इमाम ने इस लेटर के अंदर बयान किए हैं, और डेफिनेटली ये जो हुकूक हैं ऑफ कोर्स ये जनरली सारी पब्लिक से इमाम मुखातब हैं, जो भी उस इमाम को एज ए लीडर, एज ए रहबर, एज ए रहनुमा के तौर पर एक्सेप्ट कर चुके हैं, और जाहरी तौर पर भी खिलाफत उनके हाथ में है, और रूहानी और मानवी और मलकूती और तकवीनी तौर पर भी, तो फरमाते हैं कि देखो सबका फर्ज ये है, और ये एक जनरल ऑर्डर है इमाम की तरफ से कि भाई होता यही है किसी भी निज़ाम हुकूमत या किसी भी निज़ाम के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो इमाम ने एक जनरल किस्म की चीज़ें बात की हैं और आम पब्लिक को, सबको इमाम मुखातब हैं, सब मुराद हैं इमाम की, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स भी हैं, वो किसी भी सोसाइटी के खवास के लिए हैं, वो लोग जो कि अच्छी तरह डीपली इमामत और विलायत और लीडरशिप और रहबर और रहनुमा और इन चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, खुदा के कवानीन को, खुदा के दीन को, ज़रूरतों को, दूसरों से ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं, दूसरे से ज़्यादा एहसास रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल होता है, वो एक हाई लेवल और एक आइडियल पोजीशन पे होते हैं, और जब वो आइडियल पोजीशन पर उनकी पर्सनालिटी होती है और एक हाई लेवल के तकरीबन काइंड ऑफ परफेक्ट होते हैं दीनी एतबार से, तो इतनी ही हाई लेवल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनको एहसास भी होता है। खवास हैं ये लोग सोसाइटी के, और ये खवास फर्क करते हैं अवाम से, अवाम से इतनी ही उम्मीद हो सकती है कि आपने बेयत की है, वफादारी करो, ऑर्डर को फॉलो करो, चाहे मेरे पास रहो ना रहो, इमाम हाजिर रहे या गायब रहे, आपने इमाम के पीछे चलना है, इतना भी अगर कोई सोसाइटी में उस सोसाइटी की पब्लिक करती है तो एक सिस्टम को चलाने के लिए बहुत हेल्पफुल रोल हो सकता है। एक लीडर अच्छी लीडरशिप के तौर अच्छी जो है कयादत दे सकता है, एक रहबर और रहनुमा अच्छी रहबरी कर सकता है, अच्छी रहनुमाई कर सकता है। अगर ये नहीं करें, ये चार जो मेन चीजें दी हैं ये अगर ना भी हो तो फिर वो लीडर बेचारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मासूम भी हो, यदुल्लाह भी हो, ऐनुल्लाह भी हो, फातह खैबर भी हो, बद्र भी हो, हुनैन भी हो, लेकिन वो बेचारा करेगा क्या? क्या कर सकता है वो? तो तलवारें उठा के तो गर्दनें काट के जबरदस्ती तो क्यादत नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरी तरफ से जब इतनी भी मारिफत ना हो। हाँ, लेकिन अब आते हैं खवास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि वो जो खवास हैं और स्पेशली जो यूथ हैं, क्योंकि यूथ ने हमेशा मेन रोल प्ले किया है। आप बिगिनिंग ऑफ इस्लाम को देखें, जवान लड़के जवान लड़कियां हुजूर पाक के पास आते थे, माशाल्लाह खुला जहन होता था, साफ दिमाग साफ जहन होता था, हुजूर की नूरानी बातों को वो अंडरस्टैंड करते थे, इन लॉजिकली वो अंडरस्टैंड करते थे, स्पिरिचुअली एक्सेप्ट करते थे, और वो समझते थे कि ये सच्चाई है, यही दीन ए खुदा है, और एक खुदा क्या वजूद, बाकी हम गलत हैं। पेरेंट्स उनके नहीं एक्सेप्ट करते थे और पेरेंट्स नहीं मानते थे, पेरेंट्स फोर्स करते थे, थ्रेट करते थे, दबाव में डालते थे तो उनको, लेकिन वो जो है हुजूर पाक के साथ हरावल फ्रंट लाइन पे खड़े रहते थे और खवास में आ गए। ये आप हिस्ट्री उठा के देखें, मसलन सबसे नुमाया तरीन शख्सियात में से फॉर एग्जाम्पल अम्मारे यासिर हैं। आप जानते हैं उनकी वालिदा की हिस्ट्री किस तरह गुजरी है, अम्मारे यासिर जो है किस तरह की एक पर्सनैलिटी है, और भी इस तरह की जो शख्सियात हैं। तो यूथ जो है वो खवास की कैटेगरी में आ गए, यानी माशाल्लाह से अपनी कारकर्दगी और उसके जरिए से। अब उनके लिए जब हुक्म आएगा तो ये तो सबके लिए है, उनके लिए स्पेशल है। मसलन हमें कहा है कि हम सब खवास के लेवल पे आए, और अगर किसी कोई एक पूरी सोसाइटी की मेजोरिटी या ज्यादा लोग बड़ी तादाद में लोग खवास की लेवल पे आ जाएं तो वो एक आइडियल सोसाइटी बन जाती है। इमाम जमाना के बारे में यही है कि इमाम जमाना की सोसाइटी एक खवास की सोसाइटी है, यानी हम कह सकते हैं कि 95 से ऊपर 99% लोग मुज्तहिदीन हैं, फुकहा हैं, बाबसीरत हैं, अकलमंद हैं, शुजा हैं, बहादुर हैं, मुखलिस हैं, दीन के समझने वाले, दीन का दर्द महसूस करने वाले, लीडरशिप के लिए जान माल औलाद कुर्बान करने वाले, ऐसे लोगों की सोसाइटी अक्सरियत, फर्ज करें 2-3 अरब लोग हों तो, यानी फर्ज करें 2 अरब लोग हों तो 1 अरब 80 85 जो है करोड़ लोग, यानी ऑलमोस्ट 95% लोग मुज्तहिदीन हैं, फुकहा हैं, मुत्तकीन हैं, सालिहीन हैं, बाबसीर हैं, और इमाम के लिए जान छड़कने वाले हैं, मारिफत इमाम का एक लेवल भी रखते हैं। तो कैसी सोसाइटी होगी? असल डिमांड ये है, रिक्वायरमेंट ये चीज है। असल में स्टार्टिंग उधर से है, मैं हाजिर रहूं, गायब रहूं, मेरे पास रहो या उधर रहो, वफादार रहो, हुक्म दूं तो फॉलो करो, क्योंकि दूसरी जगह गिला करते हैं, कभी गर्मी का बहाना करते हो, कभी सर्दी के बहाना करते हो, बाबा ये मिनिमम थिंग्स हैं, वो मिनिमम लेवल पे तो आ जाओ, कम से कम शिया होने के दावे करते हो, मुसलमान होने का। अच्छा, ये अब खवास के लिए क्या है? खवास के लिए ये है कि मारिफत इमाम के बगैर मरना उनके लिए वाकई जहालत की मौत है, जाहिलियत वाली मौत है। खवास का एक भरोसा होता है, लीडरशिप खवास के ऊपर अपनी जो कार रहबरियत हो, रहनुमाई वो इमामत हो, विलायत होते हैं, जो उमूर हैं, जो जितने भी उसके डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर जो एक्टिविटीज करनी है, वो इमाम और लीडर और रहबर उस खवास के ऊपर भरोसा रख रहा होता है। वो कहता है जी ये खवास होंगे जो इस बोझ को उठाएंगे, ये खवास होंगे जो इस माशरे में इसको लेके आगे बढ़ेंगे। कारे रहबरियत तो विलायत और इमामत में मददगार आमिल के तौर पे सामने आएंगे, क्योंकि वो मारिफत रखते हैं, वो इमाम और कयादत और विलायत और रहबरियत की अहमियत और इम्पोर्टेंस को मिल जाने बिल्ला तकवीन और तशरी और माजी और हाल और मुस्तकबिल फ्यूचर प्लान फलान सब इस हवाले से वो अवेयर लोग होते हैं, लिहाजा उनका रोल मुख्तलिफ होता है। वो इजीली किसी प्रोपगंडे का शिकार नहीं होते, दुश्मन का इजी आसानी के साथ एक प्रोपगंडा हो गया, एक अफवाह फैलाई गई, तो उसके वो उस प्रोपगंडे का शिकार होकर लीडरशिप के बारे में गलत माने, गलत ख्यालात उनके जहन में आ जाएं, जो हदफ और मकसद वो ले लेते हैं वो उस मकसद के बारे में शक में पड़ जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, सही हूं नहीं हूं, गलत हूं ये हूं, ये खवास का काम नहीं है। हमारे यासिर की नुमाया एग्जाम्पल है, क्यों हजरत अली अलैहि सलाम एना अम्मार के की बात कर रहे थे कि हमारे मौजूदा रहबर और रहबर और रहनुमा वो वली जमान इस वक्त असर गैबत में, उन्होंने भी अपनी एक स्पीच में एना अम्मार वाले उस मौला के जुमलों को दोहराकर आज की सिचुएशन में मौजूद खवास को अलर्ट कर दिया था, अगर ये स्पीचेस अगर आप लोगों को याद हो तो। अम्मार, क्योंकि अम्मार की जो सबसे नुमायां सिफत ये थी कि वो प्रोपगंडों और फितनों के बिल्कुल अंधेरे बादलों में, बिल्कुल धूल और मट्टी ऐसी उड़ी हुई है फितनों की और प्रोपगंडों की, और झूठ का बाजार इतना गर्म है कि सच और सच्चाई उसके बीच में दब गई है, किसी को दिखाई भी नहीं देती, लेकिन अम्मार यासिर बाबसीरत इंसान उसे देखकर पहचान लेता है और उस सच्चाई को न सिर्फ खुद पहचानता है दूसरों को भी पहचानवाता है। फितनों के बम्बारमेंट और हमले और अटैक्स के दरमियान अम्मार जानता है कैसे जो है सच तक पहुंचना है, कैसे सच के ऊपर कायम और दायम रहना है। मसलन आज भी होता है ना, कितने बड़े प्रोपगंडे किए जाते हैं, एक रहमत को, एक नूर को कभी एक अजदहा और एक डेंजर चीज बना के पेश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अभी हमारा जो वाहिद अहले बैत से ताल्लुक रखने वाला मुल्क है, जो इस वक्त अहले बैत के निजाम को लेकर चल रहा है, उसके बारे में जिस दुनिया में मैं और आप रहते हैं, कितने नेगेटिव प्रोपगंडे हैं उसके अगेंस्ट, जैसे कोई बहुत बड़ा डेंजर चीज है, अजदहा है, यानी हम ऐसा लगता है कि बहुत ही लोगों के दरमियान एक खौफ फैलाया हुआ है ईरान को लेकर, वहां के सोसाइटी को लेकर। वीडियोस आप आती हैं, जो विजिट करते हैं यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं तो वो कहते हैं मैं ईरान में गया, मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, सब प्रोपेगेंडा था, ये था, ये इन टाइम पे पहचाना। फिर इसी तरह और भी चीजें इसके अंदर आ जाती है। बस खवास क्या है, खवास असल में कार इमामत के अंदर एक मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं और इमामत के उमूर उनके ऊपर इनसार कर रहे होते हैं, लीडरशिप के, कयादत के, विलायत के। बस यहां से एक चीज क्या पता चलता है, जो असरे गैबत हो या असरे जहूर हो, उसमें कार इमामत व विलायत को लेकर, कयादत को लेकर, रहबरियत को लेकर जवानों का जो एक अहम तरीन रोल बनता है, वो रोल ये है कि वो बाबसीर रहें, आगाह रहें, ताकि फितनों के अंधेरों के वक्त बिल्कुल डार्क हो जाए, इतना प्रोपगंडा किया जाए, उस सच्चाई को खुद भी पहचान लें, उसमें कायम रहें, दूसरों के लिए भी रहबरो रहनुमा बने, कोई प्रोपगंडा उन्हें उनकी लाइन से, उस सही इस्लाम से, उस सही क़यादत और रहबरियत से इधर उधर न कर सके, वसवसे इजाद न करे, युवस्विसु फी सुदूरि नास न हो सके। खा लीडरशिप की डिसीजन, लीडरशिप का फैसला, लीडरशिप का स्टांस अंडरस्टैंड कर सके लॉजिकली, न कर सके। मेरी समझ में नहीं आया कोई फैसला, मेरे इमाम ने डिसीजन, इमाम हसन मुश्तबा ने एक डिसीजन लिया अमीर वो शाम के लीडर के साथ कि भाई मैंने सुलो करना है सिचुएशन के हिसाब से। अब मेरी समझ में ये सुलो लॉजिकली नहीं आया, शरीय तौर पर भी मैं समझा नहीं हूं, लेकिन मेरा रहबर और रहनुमा ने जब ये फैसला किया है, ब्लाइंड होकर मुझे एक्सेप्ट करना है। वफादारी का मतलब ये है, बसीरत का मतलब ये है, समझदारी का मतलब यानी ये, खवास का मतलब यानी ये, लीडरशिप को लेकर हमारी जिम्मेदारियां मतलब ये, रहबर और लीडर और वली और इमाम का जो ऑर्डर, चाहे वली मासूम हो वली गैर मासूम हो, रहबर और लीडर मासूम हो, रहबर और लीडर गैर मासूम हो, इस्मत नहीं है, आदिल है, बसीरत रखता है, आलिम है, मुज्तहिद है, उससे बड़ी पोजीशन असर गैबत में कोई नहीं है, वो हाईएस्ट तरीन पोजीशन है, हाईएस्ट तरीन अथॉरिटी है, उससे ऊपर कोई अथॉरिटी असर गैबत में, पूरी जमीन में नीचे खोदो, ऊपर जाओ सियारों में जाओ, नीचे जमीनों के अंदर घुसो, समंदरों में जाओ, नहीं है और कोई अथॉरिटी, जब तक इमाम का जहूर नहीं होता है वही सुप्रीम अथॉरिटी है, वही सबसे हाईएस्ट पावर है, वही फैसला मिन और अन सब कुछ वही करेगा। उसका फैसला समझ में आता है या नहीं आता है, उसका डिसीजन मेरे अकल में बैठती है या नहीं बैठती है, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त असर गैबत में ऐसा रहबर वो, रहनुमा वो, वली वो, कायद हैं कि जो आदिल हैं, बाबसीर हैं, जिनकी बसीरत, अदालत, फकाहत, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश बचती नहीं है। जब सब जो है बाबसीर फकी सब ने जब उसको एज ए लीडर के तौर पर इंतखाब किया है, तो उसके हुक्म को फॉलो करना है। ये बहुत अहम है, क्योंकि इमाम के मुकाबले में इज्तिहाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हराम है हमारी फकी उसूल। नस नस यानी हदीस व कुरान, हदीस व कुरान की आयत के मुकाबले में जाती इज्तिहादात तजिये तहलील नहीं होते हैं, एनालिसिस नहीं कर सकता है आदमी, इमाम के ऑर्डर के मुकाबले में नहीं हो सकता, वली ये फकी के ऑर्डर के मुकाबले में तजियो तहलील करके कहे मैं तो इससे एग्री नहीं करता। जैसे इमाम हसन मुश्तबा के मुकाबले में लोगों ने अपने तजिये लाए, अपने एनालिसिस, कोई डिसीजन गलत है, ये फैसला बिल्कुल ही गलत है, इस फैसले के जो रिजल्ट आएगा तो ये होगा वो होगा। बस एक जो फरीजा बनता है हमारा वो ये मारिफत इमाम, मारिफत वली, मारिफत रहबर। मारिफत रहबर और वली किस लेवल पे? कम से कम इतनी लेवल पर। अवाम बेचारे का हुक्म दूं तो इताअत करो, ये करो, वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए, खवास के लिए जब बात आएगी, खासकर जवानों के लिए, इस मसले में उनको इस तरह की बसीरत का हामिल होना चाहिए। और ये जो हदीस है, मन मात वलम यारिफ इमाम जमानी ही माता मीतन जाहलिया, यहाँ पर जो यारिफ और मारिफा की बात आ रही है, वो तकरीबन इसी तरह की चीजों की तरफ इशारा करती है। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है, हमेशा मैदान में हाजिर रहना है, फील्ड में हमेशा हाजिर रहना है। कोई भी रिटायरमेंट, इस्लाम में रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट नहीं है, इस्लामी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मुकाबले में, ड्यूटीज के मुकाबले में ऐसा नहीं होता। तो मैं 60 साल हो गया, 65 साल, 70 ईयर्स में रिटायर्ड हो रहा हूँ, रिटायरमेंट लाइफ है ही नहीं। रिटायरमेंट फिर दुनिया से होके अबद दुनिया की तरफ जाना है, रिटायरमेंट वो ना कभी। मिनल महदी अल्लाह, इल्म के बारे में फरमाया मिनल महदी अल्लाह, तो दीन के बारे में, दीन की जिम्मेदारियों के बारे में तो रिटायरमेंट के कोई टाइम नहीं, बस हमेशा मैदान में 24 आवर। जैसे हम सुनते हैं ना उराफा से, उलमाए अखलाक से, कि खुद को हमेशा इमाम के या खुदा के हाजिर नाजिर जाने। मैं यहाँ पर यह अर्ज करूंगा, खुद को हमेशा 24 आवर अपने लीडर और रहबर और रहनुमा की सर्विसेज में रखना चाहिए, क्योंकि मैदान में हाजिर न होने की वजह से माजी में, हिस्ट्री में हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बड़ी तकलीफें सही हैं, हमारी क़यादत ने दीनी तकलीफ सही है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नाज़ुल बलागा में क्या फरमाते हैं, क्यों आपने खिलाफत के मनसब को एज ए फोर्थ खलीफा आप मुस्लिम के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया, जबकि आप ऑलरेडी इमाम मासूम थे? तो एक दलील देते हैं, फरमाते लौला हुजूर अल हाजिर व कयाम अल हुज्जत बिवजूद नासिर, कह रहे अगर हाजरीन की मौजूदगी और अंसार के वजूद से हुज्जत तमाम ना होती। मतलब क्या, पहले लोग मैदान में हाजिर ही नहीं थे, पहले मददगार ही नहीं थे, अंसार मैदान में लोग हाजिर हो गए, 24 जो है ड्यूटी शुरू कर दी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना शुरू किया, नासिर बनकर आ गए, मेरे ऊपर भी हुज्जत तमाम हो गई, जाहिरी तौर पर भी मैंने जो है ये जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि खुदा ने बलाखरा अहले इल्म से ये वादा दिया हुआ है पहले से ही कि आप जो है मजलूम की जो है हिमायत में होंगे, जालिम की आप मुखालिफत में होंगे, और जो है आप कभी भी इस मसले, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप जो है पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पहले क्योंकि मैदान में लोग हाजिर नहीं थे, नासिर नहीं थे, तो मैं ये काम नहीं कर सका, 25 साल तक, 26 साल तक नहीं पॉसिबल हो गया। अब लोग हाजिर हो गए तो पॉसिबल हो गया, तो मैंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दी। यानी वो जो जाहिरी तौर पर एक हुकूमत की तश्कील का मसला था, जो इम्पोर्टेंट था, जिसका गदीर में ऐलान हुआ था, बस मैदान में हाजिरी बहुत जरूरी है। अगर मैदान में एक जवान हाजिर ना हो, एक खवास हाजिर ना हो, एक बाबसीर इंसान, मोमिन इंसान हाजिरी हाजिर ना रहे, तो अगर लीडर इमाम मासूम भी हो, नबी भी हो, कोई रसूल भी हो, वो बेचारा अपनी लीडरशिप के सारे हिस्सों पर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल, हमारे मासूमीन, 14 मासूमीन, पैगंबर खुदा ने जो मदीने की रियासत तश्कील दी, फिर मक्के में भी रियासत इस्लामिया हुकूमत इस्लामिया तश्कील दी, उसके बाद क्या हो गया? हजरत अली अलैहिस्सलाम 25 ईयर्स छोटे नहीं है, नबी 1,24,000 नबियों में से बहुत से मेजोरिटी नबियों के साथ नहीं दिया लोगों ने, पीछे पड़ गए, कत्ल कर दिया, ना नासिरीन थे ना मैदान में हाजिर थे। तो नतीजा क्या निकला? वो कार्य रिसालत तो कार्य नबुवत को उस अंदाज से जिस अंदाज से अंजाम देना चाहते नहीं, नतीजे में उन कौमों के ऊपर अजाब आ गया। नबियों पर तो अजाब नहीं आया ना, उन लोगों पर अजाब आया जो मैदान में हाजिर नहीं हुए, जो नासिर अंबिया नहीं बने, नासिर पैगंबरान नहीं बने, नासिर आइमाए मासूमिन नहीं बने। बस जो सेकंड चीज है वो हमारे मैदान में हाजिरी है। मैदान में हाजिरी का मतलब क्या है भाई? जो कार्य कयादत है, कार्य रहबरी है, उमूर विलायत हैं, उनमें हाथ बटाना है। मसलन रहबर ये फरमाते हैं जी कि इन मजलूमीन की नुसरत होनी चाहिए मुख्तलिफ शक्लो सूरतों में, तो उन मजलूमी की नुसरत के लिए उठें, इन जालिमीन के जुल्म का पर्दा चाक होना चाहिए तो उसके लिए उठें, मुख्तलिफ किस्म के काम है ना। मैदान में हाजिरी का मतलब किस तरह है? आज की जो हमारी एक इतनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया के अंदर फर्ज करें आज हम असर गैबत में जो हमारी क्यादत है वो हम कहती है कि भाई ये चीज ये होनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे ये जुल्म है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, वहां पर वो मजलूम जालिम है उसके खिलाफ आवाज, ये काम अच्छा है इसे होना चाहिए, ये काम बुरा है इसको नहीं होना चाहिए। तो इसमें बलाकर जब वो जज करके हमें बता रहे हैं, हमारी क्यादत कर रहे हैं, आगे कौन उसको लेके चलेगा? नासरीन चलेंगे, नासरीन तब बनकर नासिर बनकर आ सकते जब मैदान में हाजिर होंगे। बस जो इम्पोर्टेंट सेकंड चीज वो ये है कि मैदान में हाजिर रहना है, कयादत जो कहती है उसकी उसको फॉलो करना है। जैसे कि मौला अली ने फरमाया, क्योंकि लोग अब मैदान में हाजिर हो गए, अब नासिर बनकर आ गए, लौला हुजूर हाजिर हो गया, कयामिल हुज्जति बिवजूद नासिर हो गया, और वैसे भी खुदा ने हमसे ऑलरेडी एक प्रॉमिस हमने किया हुआ है एज ए अहले इल्म और उलमा के तौर पर, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वगरना अगर मनसब की बात करते हो, ओहदे की बात करते हो, कुर्सी की बात करते हो, इख्तदार की बात करते हो, तो खुदा की कसम मैं क्या करता, मैं जो है ना कभी भी नहीं बैठता, और आज भी इस खिलाफत की रस्सी को उसकी गर्दन पे डालकर हांकता और कहता कहता भाई चले जाओ जिधर आए हो, मुझे नहीं चाहिए, ये पहले भी मुझे नहीं चाहिए, इख्तदार तो नहीं, हम इख्तदार के मतलाशी तो नहीं थे, क्योंकि हमने मजलूम की सपोर्ट करनी है, जालिम के खिलाफ वो करना है, मददगार भी आ गए, मैदान में लोग हाजिर भी हो गए हैं, बस हुज्जत भी पूरी हो गई है। एक मरतबा ये है, देखिए एक सूरत ये है कि एक मरतबा वो है कि जिसमें कुछ नासरीन को हजरत पुकारते हैं, इस इंतजार में नहीं रहते कि नासिर मैदान में आ जाएंगे, अंसार बन जाएंगे तो फिर ये जो है मसला जो है हल हो जाएगा, खुद हजरत पुकारते हैं, वो अम्मार कहाँ है, मालिक कहाँ है, जुंदब कहाँ हो, मसलन और भी एक तबीहान है, कौन है, उनके नाम लेके कहते हैं तुम कहाँ हो, क्यों? ये लोग वाकई मददगार थे, इन पर भरोसा था हजरत को। जंग साफीन में मैं कुछ देर पहले भी यहाँ घर पे बात कर रहा था, जंग साफीन में अजान जोर का वक्त हुआ तो शाम वालों के लश्कर से एक बंदा परेशान होकर आया, 19 या 25 बंदे हैं जो इस तरह आए हैं इस लंबी सी तवील जंग में, आकर हजरत अली अलैहिस्सलाम के खेमे में आया, टेंट में आकर अर्ज किया कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, देखें मैं देख रहा हूँ जोहर की नमाज हो गई थी, आपने वही अजान दी, उन्होंने भी वही अजान दी, आपने भी वही नमाज पढ़ी, उन्होंने भी नमाज के बाद आपने भी इस्लाम मुस्लिमीन की दुआ की, उधर भी इस्लाम मुस्लिमीन की, तो लड़ाई किस बात की हो रही है, मैं परेशान हूँ, हक किधर है, क्योंकि वही काम इधर हो रहा है, वही काम इधर हो रहा है, वही नमाज है, वही रोजा है, वही हज है, तो सिमिलैरिटीज हैं, मैं अब कंफ्यूज हूँ कि आप फिर लड़ क्यों रहे हैं भाई। तो मौलाए कायनात ने कहा तुम इसका जवाब चाहते हो तो अमारे यासिर के पास जाओ। बाज़ औक़ात हजरत ने खुद इरशाद फरमाया है, जो कुरान को नेज़ों पे देखकर कंफ्यूज हो गए थे उनको जो है मैयारात दिए हजरत ने, अपने आप को डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं किया, इनडायरेक्टली अपनी हकानियत बयान की और एक स्केल और मैयार और स्टैंडर्ड देखे, ताकि तारीख में जब भी कोई ऐसी कंफ्यूजन आज भी खड़ी हो जाए, आज भी काले सफेद बड़े लंबी दाढ़ी फलान ये वो हल्ला गुल्ला मुश्तहिद दफ्तर ये वो हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए, पॉसिबिलिटीज आज भी है, वो उस जमाने के लिए एक्सपायरी डेट नहीं रखती है चीजें, ये रिपीट हो जाती है हिस्ट्री में। आज भी ऐसा हो सकता है लीडरशिप के मुकाबले में, उम्मत के मुकाबले में, फिक्र के मुकाबले में, असली इस्लाम के मुकाबले में, असली तशैयों के मुकाबले में, असली हौजा के मुकाबले में, असली मस्जिद और इमाम बारगाह हो सेंटर के मुकाबले में, नकली जाली प्लांटिड सारी वो चीजें हो सकती हैं। उस वक्त भी यही हो गया, जाली दीन था और शाम वालों के पास। इसीलिए वो बंदे जो सादा थे बेचारे, खवास नहीं थे, वो कंफ्यूज हो जाते थे, कहते कि भाई देखो वो वही नमाज पढ़ रहे हैं, वही नमाज जुमा है, वही आजादारी है, हम हमारी जबान में आज की बात करें, वो वही मुश्ताहिद है, सैयद भी है माशाल्लाह से, अमामे भी बड़े हैं, हो सकता है सादात का सिलसिला नसब भी एक हो, मुश्ताहिद वो भी है, फकीह भी है, वो तो ये कहता है, वो तो वो कहता है, तो वही सिरोज जंग सफीन में वही हो रहा था उनके लिए। यहाँ भी अमामे वाले हैं, यहाँ तो कोई नहीं था ऐसे जो टाई और पेंटकोट पहनकर बैठा हुआ था, या कोई ऐसा बंदा तो नहीं था कि खुदा का मुनकिर था, नमाज पढ़ रहे थे, जमात कायम हो रही थी, मुस्तहबात पर अमल करते थे, उन्हेरे फुरात के पानी में गुस्ल शहादत करते थे। गुस्से में तो बंदा कंफ्यूज हो गया, अब इधर क्या चाहिए? खवास, बाबासीर लोग, इन कंफ्यूजन से निकालने वाले, लीडरशिप की मदद करने वाले, अंसार बनने वाले, मैदान में डट जा अम्मार यासिर। इसीलिए मौला ने फरमाया ए अम्मार, अम्मार कहाँ है भाई? क्यों? ये फितनों के और जाहिरी दीन के लबादे, खुदा के नाम, पैगंबर के नाम, दीन का नाम, जज्बाती माहौल, इमोशनल ब्लैक मेलिंग सिचुएशन क्रिएट करना, हल्ला गुल्ला, या हुसैन वाह हुसैन, ये ऐसी उसके दरमियान ये जो गुबार पैदा करके, धूल मट्टी उड़ा के फितनों के तकद्दुस के लिबादे में, इसके नीचे जो वो हकीकत को छुपाना चाहते हैं, इन फितनों के पर्दों को चाक करके, ये अम्मार है जो उस हकीकत तक पहुंच के खुद भी दूसरों को भी पहुंचा सकता है। और जैसे कि अम्मार ने, जब वो बंदा अम्मार के पास, ये अम्मार ने बड़ी तफसील से उसको एक एक चीज समझा दी, और आराम से एक एक बात कुरान से हदीस से समझा दिया, और उसके बाद वो कैंप, सामने वाला कैंप छोड़कर इधर हक के कैंप पे आ गया बंदा। ये अम्मार बस एक जो रोल है, क्या है खवास का रोल, क्या है खासकर जो हमारी यूथ है और जवान है, वह बसीर बने, प्रोपगंडों के शिकार नहीं होना है, मैदान में भी हाजिर रहना है। ऐसे लोगों के लिए क्या है, मौला खुद आवाज देते, नहीं कहते लौला हुजूर अल हाजिर व कयाम अल हुज्जत, वो आ गए तो मुझे आना पड़ा, नहीं, इनको मौला बोला, क्यों? मौला का इनके ऊपर एक इनसार है, लीडर का, वली का, ये इनसार करता है, कहता भाई ये लोग हैं जो लीडरशिप और कयादत के हेल्पफुल लोग बनेंगे, ये इन्होंने आगे इस उमूर को चलाना है, इनके ऊपर मैं भरोसा करूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी कुछ लोगों के पीछे जाते थे ना, कुछ लोगों को इमाम ने वो नहीं किया, नॉर्मल तरीके से पेश आए इमाम, वो शामिल हुए, कुछ लोगों के लिए कहा रोशनी बंद करता हूँ, अंधेरा करता हूँ, चले जाओ, कुछ लोगों के कैंप में जाके कहते हैं चलो यार हमारे साथ, पैगाम भेजते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो खुद चले जाते हैं हसनैन को भी लेकर, ताकि वो थोड़ा सा इमोशनली भी प्रेशर में आ जाए, उसकी सोच बदले, जब देखेंगे कि भाई औलाद भी आई है, सारी फैमिली उठ के आई है, वो इतनी बड़ी मुकद्दस वजह तकलीर के कायनात फैमिली, पूरी खानदान आई है, उनको हिदायत दे, क्योंकि समझ रहे कि इसके अंदर है कुछ, ये खवास के लाइन में आ सकता है। यहाँ पर भी ऐसे है, ऐना अम्मार, अम्मार कहाँ है बाबा, आ जाओ अम्मार, नहीं फरमाया अम्मार, क्योंकि अम्मार आ गया, मैं अम्मार मैदान में हाजिर हो गया, अम्मार नासिर बन गया, तो अब मैं भी जो है करना पड़ा मुझे भी, ये नहीं फरमाते, फरमाते ना अम्मार इज समथिंग डिफरेंट, वो स्पेशल मैन है, वो खवास में से, लिहाजा अम्मार को तो आवाज देते हैं, ओ अम्मार आओ, यहाँ फितरों में लोग मुब्तला हो गए हैं, कार इमामत विलायत के मददगार बन के आ जाओ, फितनों की धूल की मट्टी को हटाओ। बस जो अहम तरीन नुकता है दूसरा वो ये है, मैदान में हाजिर रहना है किसी भी हाल में, मैदान में हाजिरी से मुराद ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तीसरी चीज, ये सब तब पॉसिबल है कि खवास अपने आप को बनाएं, अपनी तरबियत खुद करें, अपनी खुदसाजी जिसको कहते हैं, अपने आप को खुद बनाएं, वो खुद अपने आप को इस लेवल पे ले आए, बाकिरदार बने, करेक्टर अपना खुद दुरुस्त करें, अपने अंदर जो खामियां हैं, कमी है, उसको दूर करने लग जाएं। खवास की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस तरह वो सोसाइटी की कमियों को दूर करते हैं, दूसरों के अंदर जो नकाइस हैं उसको वो दूर करते हैं, पहले खुद का करें वो। हदीस है मौलाए कायनात से, जिसमें इमाम जमाना के असहाब के बारे में फरमाया है, जो सारे के सारे यूथ हैं, क्योंकि मोस्टली यूथ ही हैं, उसके बारे में फरमाया कि काला असहाबुल कायम अल इमाम अल महदी जल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ शबाबुन ला कहून, कह रहे हैं कि उनमें ज्यादातर यूथ होगी, जवान होंगे। खूब ये जवान इसलिए नहीं है कि जवानी है तो लड़ने बढ़ने के लिए जरूर ना। असहाब, असहाब मतलब बॉडी बिल्डर नहीं, निंजा जानने वाले फाइटर नहीं, बेबसीरत जो है एथलेटिक या बॉडी बिल्डर्स नहीं, बाबसीर लोग हैं। सबसे पहली सिफत क्यों है उन जवानों की? वो बसीरत रखते हैं, शुजाआत रखते हैं। हाँ, फिजिकली तौर पर भी यंग हैं, एनर्जेटिक भी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वो बात के मसले हैं। पहली चीज ये है कि वो बसीर। हमने अलमदार अब्बास के हवाले से हमने कई बार गुफ्तगू किया, अलमदार अब्बास की वो हमारे यहाँ, क्योंकि साउथ एशिया में हीरोगिरी का एक कंसेप्ट मौजूद है ना, पहलवानी फलान ये वो, उठक पुठक कर दिया तो हम समझते हैं कि बड़ी बड़ी शख्सियत है। नहीं, हजरत अलमदार अब्बास की का दो काठ हो, जिस्मानी ताकत हो, जवानी, वो दूसरा सेकंड सेकेंडरी जो है इशू, वो सिर्फ फजीलतें। पहली फजीलत नाफिजतुल बसीरा होना है, बसीरत रखते थे हजरत अब्बास। दुश्मन के प्रोपेगंडे का शिकार नहीं होना, दुश्मन की लालच का शिकार नहीं होना, दूसरों को भी अवेयरनेस देना, दूसरों को भी होशियार रखना, और दुश्मन ने ये ऐसा हथकंडा इस्तेमाल भी कर लिया क्राइसिस तरीन टाइम पर, जब इंसान की जान खतरे में जा रही हो। जब हम बैठ के एनालिसिस करेंगे तो इस तरह करेंगे, नाफिजतुल बसीरत है हजरत अब्बास। यहाँ एक फरमाया कि इमाम जमाना के ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या हैं? वो जवान होंगे। खूब जवान होंगे क्यों? इसलिए नहीं कि वो जवान है तो जवान होना जरा अच्छा लगता है, नहीं, वो सेकेंडरी चीजें हैं। फर्स्ट ये कि वो जवान बाबसीरत होंगे, मैदान में हाजिर रहने वाले होंगे, करेक्टर भी अपना उन्होंने खुद बनाया होगा, बातकवा होंगे, परहेजगार होंगे, बाअखलाक होंगे, अच्छे किरदार के मालिक होंगे। फिर आगे फरमाते हैं शबाबुल कुहूल फीहिम इल्ला मिस्ल अल-कलहल अल-ऐन वल-मिल्ह फिज़्ज़ाद व अक़ल अज़्ज़ाद अल-मिरवान। गैबत नुमानी और गैबत तूसी के अंदर ये हदीस है, बड़ी हाईली ऑथेंटिक किस्म की किताबें इस मामले में। उसके अंदर फरमाते हैं देखें, बुजुर्ग होंगे लेकिन वो बुजुर्गों की जो मकदार है उसके अंदर जो क्वान्टिटी है वो कहाँ ऐसे है जैसे कि आप खाने में जो है ना नमक होता है, या आंखों में जो आप सुरमे की एक लाइन लगाते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। यानी वो होंगे, उनके एक्सपीरियंस तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। मैक्सिमम जो इमाम के असहाब हैं वो यंग लोग हैं, जवान हैं, जवान लोग हैं। बस जवानों की एक बड़ी हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज, अपनी यानी अपने आप को करेक्टर वाइज ठीक करने में तालीम और मारिफत है। जैसे वो हमारी दो बेटियां हैं जिन्होंने क्या कहते हैं इस हवाले से माशाल्लाह मॉडर्न उलूम में जो कि इलाही उलूम है वो भी उनके अंदर जो ग्रेजुएशन के लिए, और हम आरजू रखते हैं कि मजीद अल्लाह ताला इल्म मारिफत अता करे, मजीद जो है बेहतरी, और जो भी इनके अहदाफ व मकासद हैं अपने लिए रखें, यकीनन वो मुस्बित अहदाफ व मकासद होंगे जिंदगी के, उसमें कामयाबी और कामरानी अता करें। मसलन देखें, पहले भी मैं शायद गुजशत जुमे में भी ये मैंने डिस्कस किया कि देखें जवानों की आमतौर पर मसला क्या होता है, वो उनकी अपनी कुछ एक्टिविटीज होती हैं। बेसिकली खुदा ने जवानों को खल्क किया है सलीम उल फितरा, रिवायात में आया है लफ्ज सलीम उल फितरा व हदीस उल अहद बिल इस्लाम। ये सिफात रिवायात में आई हैं कि वो सलीम उल फितरा है, यानी उनकी फितरत प्योर है, पाक व तायर है, यानी खुदा की फितरत पर है वो जवान है, इसलिए कि अभी उन्होंने उसको खराब नहीं किया। हदीसुल अहद बिल इस्लाम, इस्लामी कवानीन व उसूल व सकाफत व कल्चर और रूल और लीडरशिप व क्यादत के हवाले से लेकर वो जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं और वफादारी के साथ उसका साथ देते हैं। ये जो है उनकी दूसरी सिफत बयान की है, लिहाजा जो है ना बहुत जरूरी है। मगर ना क्या था, आप देखें जो इससे हट जाए, विलायत के लाइन से हट जाए, तो फिर जाहिर है उनके पास फिर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आती है ना, लाइनें भी एक नहीं रहती हैं, डिफरेंट लाइनें रहती हैं। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, आप फर्क को खुद सोसाइटी में देख सकते हैं। जो भी दर विलायत से इधर उधर हुआ है, लीडरशिप और क्यादत से इधर उधर हुआ, वो कंफ्यूज है। बहुत सी जगहों में दुनिया के अंदर बहुत से फनामनाज और इशूज और इंसिडेंट्स हैं, वो कंफ्यूज है, उनके पास क्लियरिटी नहीं है मौजूद। असर जाहिलियत में ये मसला था, असर जाहिलियत में जो यूथ थी उनके सामने जो उनका एक अरमान होते थे, उनकी जो आरजू होती थी, उनके जो अहदाफ होते थे, जो वो समझते थे कि मैं मुझे बस ये तो मैं सक्सेसफुल मैन कहलाऊंगा, मेरे फ्यूचर बस ब्राइड हो गया अगर मेरे पास ये आ जाए ये आ जाए। ये आज भी है ना, ये अगर वो डिग्री हो दू तो मैं समझूंगा मैं मेरा फ्यूचर मुस्तकबिल सिक्योर हो गया, अगर वो नौकरी मिले उस पोजीशन के साथ तो मैं समझूंगा ऐसा हो गया वगैरह वगैरह है। एक हद तक ठीक है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। उस असर जाहिलियत में भी इस तरह के मैारात थे, वालिदैन भी घर के अंदर भी यही कुछ टीच होता था, एजुकेट किया जाता था, यही तरबियत होती थी कि तुम्हारे पास अगर 100 घोड़े होंगे तो तुम सक्सेसफुल मैन हो, बेटा जहन जहन में रखना, फलां कबीले की फलां सरदार की बेटी से तुम्हारी शादी हो गई और वो तुम्हारी बीवी हो और वो हमारा दामाद बने तो हम कामयाब हैं, हम सक्सेसफुल फैमिली हैं, हम सब में जो है एक स्पेशल लोग हैं वगैरह वगैरह। ये स्टैंडर्ड्स होते थे, लड़कियों के अरमान यही थे। सोसाइटी में जो सबसे पॉपुलर पॉइंटर है जिसके वो शेर को काबे में लटकाया है नेक्स्ट ईयर तक फेस्टिवल में जीत कर, काश कि वो मेरा हस्बैंड बन जाए, नहीं होता था। वो जो सबसे बड़ा गवैया है, गाने गाने वाला सिंगर है, जो पॉपुलर है फेमस है, जिसके अक्काज बाजार अक्काज से लेकर उधर तक फेस्टिवल होते हैं, काश मेरी उससे शादी हो जाए। जवान लड़के, वो जो डांसर है, वो जो पॉपुलर औरत है, वो जो मसलन बेबाक किस्म की लड़की है जो सड़कों पे यूं चलती है यूं बातें, फला शायर ने उसके बारे में ये शायरी की थी, माफ करना मसलन उसके जिस्म को लेकर उसकी आंखों को लेकर, जैसे आज भी है ना हमारे पास भी ऐसे शायर मौजूद है, तो काश वो मेरी बीवी बन जाए। ये घटिया किस्म के, बहुत ही पस्त लो लेवल किस्म के उनके गोल्स होते थे। ये जो है तालीम नहीं है, ये मारिफत नहीं है, ये तरबियत नहीं है, ये घर भी नहीं है जो बच्चों को इस तरह ट्रेन करता है, बच्चों को ऐसी तरबियत करता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो जो कयादत और लीडरशिप के खवास जवान हैं, उनके जो अरमान हैं, इनमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती है, कभी वो इस तरफ सोचते ही नहीं है, क्योंकि इतना पस्त सोचे हैं ये कि उनका स्टैंडर्ड और मयार इतना हाई है, वो कभी इस लेवल पे गिर ही नहीं सकते, वो बहुत ही हाई लेवल पे होते हैं। उनकी सोचे मसलन उनके अरमान ये होते हैं, देखें फलां मुल्क के अंदर बड़ा जुल्म और सितम है, काश वो खत्म हो जाए और उस खत्म होने में मैं भी कोई रोल अदा कर सकूं, वो जो मजलूम था उसकी आवाज मैं बन सकूं, वो जो अच्छे अखलाक का जो एक एक एग्जाम्पल बनना है, काश वहां पर मेरा कोई रोल हो, मैं भी कोई रोल अदा कर सकूं। ये जो दीन का मैसेज है जिसके न पहुंचने की वजह से इतने सारे लोग गलत रास्ते पर हैं, काश यार ये मैसेज उन तक पहुंच जाए, इस पहुंचाने में मेरा कोई रोल हो, मेरा लीडर, मेरा कायद, मेरा रहबर, मेरा वली, मेरा इमाम, उसके अरमान ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छाई की तरफ आए, सही इस्लाम को पहचाने, सही दीन को पहचाने, अच्छाइयां उनके अंदर आ जाए, काश इसमें मैं कोई रोल प्ले कर सकूं ताकि इमाम का दिल भी मुझसे राजी हो, खुदा भी मुझसे राजी होगा डेफिनेटली, वगैरह वगैरह वगैरह। देखें उनके सुबह शाम आदाब जो होते हैं वो इस तरह के, जो घटिया किस्म के आदाब थे। बस एक जो अहम चीज है, तालीम और मारिफत, तालीम के अंदर क्योंकि तरबियत भी ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि जब हम कुरान और इतरत के पॉइंट ऑफ व्यू से तालीम की बात करते हैं तो उसमें तरबियत इंक्लूड है, तो अगला जो है वो मारिफत, मारिफत तालीम से थोड़ा सा ऊपर का लेवल है जो हमने पहले से डिस्कस कर लिए हैं। इसके लिए जरूरी क्या है, यहाँ पर यूथ से हटकर ये है, क्योंकि यूथ ने भी बलाखरा कल को जाकर फादर मदर बनना है, हम में से हर एक का इसी प्रोसेस से गुजरेंगे, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद। घर बहुत अहम है, जिस जो आस्ता आस्ता निगलेक्ट हो रहा है अफसोस के साथ मैक्सिमम सोसाइटीज के अंदर, घर एक तरबियतगाह होनी चाहिए, घर को एक दर्सगाह होना चाहिए, घर को मिनल महदी लल्लाहद है, तो ये बहुत मेन रोल है। अगर जी सब कुछ नहीं कह सकते घर को, सारा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक मेन रोल है घर के माहौल, घर के अंदर पसंद नापसंद, पेरेंट्स का उठक बैठक, पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, मसलन बच्चे के स्कूल न जाने पे कितनी नाराजगी दिखाते हैं, बच्चे के किसी गलत गैर शरी अमल पर कितनी नाराजगी दिखाते हैं, दोनों का लेवल क्या है, दोनों के बारे में रिएक्ट और रिस्पॉन्स कैसा है, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, कि उससे बच्चे को इनडायरेक्टली ये पता चलता है ना कि कौन सी चीज मेरे पेरेंट्स के नजदीक इंपॉर्टेंस है, कौन सी क्या है। मसलन मैं अगर नऊज़ बिल्ला किसी के बारे में गलत और शरत बातें करूं या गलत शलत हरकतें करूं तो ये इनका रिएक्ट या रिस्पॉन्स कैसा होता है, और अगर मैं एजुकेशन के मामले में या किसी और मामले में, दुनियावी मामलात में अगर कुछ करता हूँ, तो ये सारी चीजें जाहिर है इनसार करती हैं। खुद पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, उनके गल के अंदर कल्चर किस तरह का है, ये सारी चीजें बहुत अहम है। बहरहाल तालीम और मारिफत, तालीम के अंदर तरबियत भी मौजूद है। मैंने पहले यहाँ जुमे के दिन भी अर्ज कर दिया है कि घर को एक नाइट नर्सरी नहीं होना चाहिए कि बच्चे सारा दिन अपना टाइम गुजारते हैं आउट ऑफ होम, रात को सोने के लिए घर आते हैं और कभी खाना खाते हैं, कभी स्नैक बिनेक खाकर आए हैं तो जरूरत भी नहीं है खाने के लिए, और वो शेल्टर होम में आकर या नाइट नर्सरी में आके सो रहे हैं और अगले दिन सुबह फिर घर से निकल रहे हैं, बाकी सारा टाइम बाहर स्पेंड कर रहे हैं। उनकी एकेडमी बाहर है, उनकी जो तरबियत गाह है वो बाहर है, उनकी दरसगाह बाहर है, या स्कूल है, कॉलेज है, सोसाइटी है, ग्राउंड है, पता नहीं क्या है, कहाँ कहाँ है, वो उनकी असल दरसगाह है, तो वो वहां ट्रेन हो रहे हैं, वहां उनको बनाया जा रहा है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, उनकी शख्सियत तामीर होते हुए ऊपर आ रही है। लेकिन जो घर है वो एक असल में उनके लिए गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, नाइट नर्सरी, जो भी नाम दे दें वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक चीज जो तालीम और तरबियत है वो सिर्फ उसमें किताब पढ़ना, दर्स सुनना, मुबाहिसा करना, ये सिर्फ नहीं, और भी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तालीम और तरबियत के अंदर बस आखिरी बात है और आपकी जहमत को मैं तमाम करता हूं, क्योंकि टॉपिक बड़ा वसी है, मैंने मोटी मोटी बातें की जिसके अंदर और भी सारी चीजें खुद आप समझ सकते हैं। तालीम और तरबियत में लेवल क्या होना चाहिए? देखें, लेवल ये है कि एक टर्मिनोलॉजी है, पहले भी यूज की है मैंने, जज्म इल्मी पैदा हो, अज्म अमली पैदा हो। मतलब क्या? फिक्री एतबार से उसको ऐसी एजुकेशन मिले, ऐसी इंफॉर्मेशन, मालूमात, एजुकेशन मिले कि वो उसकी फिक्र सही लाइन में होनी चाहिए, दीन को लेकर, दुनिया को लेकर, खुद को लेकर, अपने जैसे इंसानों को लेकर, अपनी कयादत और लीडरशिप को लेकर, उसकी चीज क्लियर होना चाहिए और ठीक ठीक होना चाहिए। कंफ्यूज, फितनों के गुबार में लिपटी हुई एक सोच, कंफ्यूज है, पता नहीं है। हाँ जी, कहते तो हैं कि असर गैबत में ये जिम्मेदारी है, तो ऐसा है निजाम, तो ऐसा है, यार ये उलमा का काम है, मुझे नहीं पता बाबा, बहरहाल मैं तो ऐसे चल रहा हूँ, ये नहीं, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। ये है जज्म इल्मी। अज्म अमली क्या? जब फिक्र खालिस है, सही है, मालूम है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन मौजूद नहीं है, नास नहीं है, फिर उसके ऊपर अमल दरामद, पक्का मजबूत इरादे के साथ और सही अमल, फिर सेक्रीफाइस करना उसके लिए, यानी जरूरत महसूस हो जाए, हर लेवल की सेक्रीफाइस है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये यानी जब हम कहते हैं तालीम और तरबियत, तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए आगा साहब? तालीम और तरबियत का, मारिफत का आउटपुट, आउटपुट ये है, इल्मी जज्म पैदा हो, अमली अजम पैदा हो, ये होनी चाहिए असल में। वगर नबर फला किताबें पढ़ लिया, होजे के इतने मदारिस तय कर लिए, डिग्री हासिल कर दी, कोई फायदा नहीं है, ना जज्म इल्मी है, ना अज्म अमली पैदा हुआ है, मैं क्या करूंगा उस डिग्री से? को 20 साल होजे में रहा था, क्या फायदा हो गया? 25 साल रहा है, जो होजे में पैदा हुआ असल में, फर्ज करें दरसगाह के अंदर पैदा हुआ है, और सुबह शाम उलमा के बगल अगल में पला बड़ा है, और सारे इश्तिहाद और फलान की डिग्रिया ली है या पोस्ट डॉक्टरेट किया है, ना जज्म इल्मी है, ना अज्म अमली है, ना फिक्र ठीक है, ना अमल उसके मुताबिक है, तो क्या करेंगे उससे भाई? हमने अचार डालना है उसका? ऐसी तालीम का, ऐसी डिग्री का, ऐसी मारिफत का, ऐसे टाइटल का, ऐसे काले सफेद लाल नीले पीले अमामों का, ऐसे मेहराबों का, मस्जिदों का, दीनी लिहाज से बात करनी है तो दुनिया एतबार से बात करेंगे, इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा इंजीनियर को क्या करेंगे? बेदीन है, मैं क्या करूं, अचार डालूं उसका? ऐसे बहुत सारे हैं प्रोफेशनल लोग जो बेदीन हैं, जितनी ज्यादा दीन, जितनी ज्यादा जो है उन्होंने डिग्री हासिल की, इतनी ज्यादा बेदीन हो गए हैं। वो कहते हैं फखर के साथ, मैं तो जी लिबरल आदमी हूँ, जी मैं लिबरल हूँ, मैं सब सब ठीक है, मैं सेक्युलर, मैं लिबरल, ओ फखर कर रहे हैं इसके ऊपर, क्या करूंगा हम उसे अचार डालेंगे उसका? बस अज्म जज्म इल्मी अज्म अमली, ये बहुत जरूरी है, इसकी तरफ जाए, मुख्तलिफ मैदानों में किरदार अदा करना है, जाहिर है। और आखिरी पॉइंट वो ये है, मौला अली अलैहिस्सलाम का जुमला है, हम और सबके लिए बहुत सनुकात हैं जो अब जाहिर है, सामने वक्त में मजीद गुंजाइश नहीं है, और आप लोग भी ऑलमोस्ट थक चुके होंगे, मैं भी नहीं चाहता हूँ ज्यादा आप लोगों को थकाऊं और आपके प्रोग्राम में ज्यादा मुखिल रहूं, वो ये है। मुरारी ने फरमाया, देखो मोमिनों, खासकर खवास, खासकर जवान, बाबा सीरत जवान, एक बात जहन में रखो, अगर आप लोगों ने अपना किरदार अदा नहीं किया और सोए रहे, सोए रहे मतलब ये कि सोता तो कोई नहीं है ना, सुबह शाम सो के तो नहीं रहता, सोए मतलब ये कि गाफिल रहे, जहां आपको जागा हुआ इंसान वो है जो हक के साथ दे, इमाम के साथ दे, रहबर के साथ दे, कायद के साथ दे, रहनुमा के साथ दे, दीनी कामों में फ़ाल हो जाए, वो उसको कहते हैं जागा हुआ इंसान है। अगर ऐसा नहीं है, सोया रहा है, मतलब सोया क्या है, सिर्फ उसको अपनी फिक्र है, अपने बीवी बच्चे हैं, मैं शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, फिर वो यही सर्कल पे चलते रहेंगे, वो भी शादियां करेंगे, बड़े होकर बच्चे पैदा करेंगे, उनको पालेंगे पोसेंगे, यही सर्कल पे चलते रहिए, तो सोने वाली बात है ये। तो फरमाया कि जहन में रखो, तुम्हारा दुश्मन तो कभी नहीं सोता है, मन नाम लम यूनम अनहू, जो सो जाता है ना वो जहन में रखे कि उसका दुश्मन जागा रहता है। लिहाजा होशियार रहो, इसलिए कि अगर खवास सो जाएंगे, जवान सो जाएंगे, अगर जो है मामूमीन सो जाएंगे, इमाम तनहा रहेगा, तो इमाम के ऊपर कोई भी जमाने का शिमर, यजीद, हुरमला, इब्न जियाद, कोई भी आके हमला करेगा तुम्हारे इमाम के ऊपर, इतनी बेदर्दी से तुम्हारे इमाम को कत्ल करेगा, उसके खानदान को, उसके बच्चे को, उसके बूढ़े को, उसकी औरत को, किसी को नहीं बख्शेगा वो। गैरत है तुम्हारे अंदर तो कभी भी अपने इमाम के पुश्त को खाली नहीं करना, सोना नहीं है, होशियार रहना है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे इमाम के ऊपर प्रोपेगंडों के तीर चलें या फिजिकल वो लकड़ी के तीर चलें, बात एक ही है। तुम होशियार रहोगे, तुम इमाम के पुश्त पर एक पहाड़ बनकर खड़े रहोगे कि असल में जो सहारा है वो इमाम है, कार इमामत में जहीर बनना है, कुरान में है जहीर दीन बनना है, अगर तुम रहोगे मैदान में हाजिर रहोगे बसीरत के साथ, तो फिर कोई जुरत नहीं कर सकेगा, किसी में ये जुरत नहीं होगी कि वो आकर जो है करबला बर्पा करे, तुम्हारे इमाम के साथ इस तरह करे, तुम्हारी कयादत के साथ ऐसा करे, कभी नहीं हो सकेगा। एक छोटा नमूना, आपकी जहमत खत्म, जब दाइशे मलून आई शाम में, और वो कुवैती और पत्नी या सऊदी, वो दाइश था जिसने वो वीडियो रिलीज कर दी कि हम जो है तुम्हारी, या उसके अल्फाज हैं, मैं इसी तरह नकल, कुफर कुफर नमाशत कहा, हम तुम्हारी जैनब को फिर से कैदी बनाएंगे और इस शिरक की अलामत को यानी हरम को जमीन से यकसां कर देंगे और यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं होगा, और बड़े करीह और मकरूह अंदाज से शक्लें बनाते हुए उसने ये जब बात की, हालांकि वो एक गठिया पस्तो हकीर बंदा था जिसकी कोई हैसियत ही नहीं थी कि उसके लिए रिस्पांस देने के लिए आला जो है क्यादत से वाबस्ता आला तरीन जो है उनके लेफ्ट और राइट हैंड यानी मालिक अश्तर जैसे लोग, इब्ने अब्बास जैसे लोग या अम्मार जैसे लोग आकर जवाब दे दे, लेकिन इशू इतना अहम था कि उठ के सैयद ने जवाब दिया और फरमाया, क्या बात करते हो? कहा कि तुम फिर से कैदी बनाओ और हम तमाशा देखें। कहा ये मुमकिन नहीं, वो एक दफा हो गया, लोग सोए रहे तो नतीजा ये निकला, अब ये नहीं हो सकता, लन तो सब भी सही ना मर रहते हैं, ये जुमले फरमाया, हो ही नहीं सकता, हम जब तक जिंदा हैं, फिर वो जो ये बातें अब शेर की जबान में आ गई, नाहनु अब्बासी की या जैनब, आप देखते हैं नौहा तराना, ये अजम इरादा जवानों ने जहर किया, नाहनु अब्बासी की या जैनब, हाँ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बस बस क्या है, मन नामा लम यूनिम अनहू, ये आखिरी चीज ये है कि आदमी को होशियार रहना है, सोना नहीं है, गफलत का शिकार, दुनियावी मुश्किल हमें अपनी तरफ अगवा करके ना ले जाए कि हम लीडरशिप और कयादत और उम्मत के मसाइल से काफिल हो जाए। परवरदिगार आलम से 10 बदुआ है कि परवरदिगार आलम आप सबको, खासकर हमारी दो बेटियों को, हमारी अजीजाओं को मजीद खुदा तरक्की दे, बेहतरी इनायत करे, उनके जो भी आला मकासिद हैं उस मकासिद में कामयाबी इनायत करे, जितने हाजरीन हैं उनके जितने भी आला मकासिद हैं, आला अहदाफ हैं, आमिर भाई क्योंकि बिल्कुल क्लोजली नजर आ रहे हैं, दिगर भी अफराद, डॉक्टर साहब की फैमिली, वहां पर मौजूद हाजरीन, ऑनलाइन सुनने वाले, जिस घर में मैं मौजूद हूँ, हमारे ब्रादर मुगीस भाई, उनकी फैमिली, परवरदिगार आलम सबके मकासिद को अपनी दरगाह में कबूल व मकबूल करे और नस्ल दर नस्ल हमें अपने वली इमाम और वली जमान जो भी वली हो, मासूम या फकाहत की शक्ल में या इस्मत की शक्ल में, अदालत की शक्ल में या क्या कहते हैं इमाम आदिल साहेब मलकूत व इल्म गैब की शक्ल में उसके वफादार रहने बाबसीर और खवास में से शुमार होने की हमें इंशाअल्लाह तौफीक इनायत करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।